एक्सपेक्टेशंस। लेकिन तभी आस्था आगे बढ़ी और उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बाकी सबको सवालिया निगाहों से देखा। फिर अभिमान जी, दादाजी और नानी माँ ने भी अपनी नजरें झुका ली तो आस्था पूरी तरह से सोच में पड़ गई थी। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? अब आगे जरूर कोई ना कोई ऐसी बात और है जो ये सब मिलकर मुझसे छुपा रहे हैं। अब देर ना करते आस्था आगे बढ़ी और रौनक को देखते हुए एकदम से बोली, रौनक, आहान जी की बीवी बनने से पहले तू मेरी दोस्त है और तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती। बता मुझे क्या हुआ है और आप सब अरमान जी से अजनबियों जैसे बिहेव क्यों कर रहे थे? अब जैसे ही आस्था ने ये सवाल पूछा तो वैसे ही रौनक, जो कुछ ज्यादा ही मुंह फट थी, वो भला चुप कैसे रह सकती थी। इसके बाद रौनक मायूस होकर शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बता देती हैं। आस्था, केवल तुम और अरमान भाई ही अलग नहीं हुए हैं बल्कि इस घर में रहने वाली सभी शादीशुदा जोड़े एक दूसरे से अलग हो गए हैं। इतना ही नहीं, जब से अरमान भाई को ये पता चला कि टाइगर और मारिया दीदी की शादी हो गई है तो ये जानते ही अरमान भाई ने उन्हें तलाक लेने का ऑर्डर दे दिया है। तो इसीलिए हमने अपनी शादी का सच अब तक उन्हें नहीं बताया क्योंकि वो हमारे वजूद के बारे में भूल चुके हैं और हम सबको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि अगर हमने उन्हें अपनी शादी का सच बता दिया तो वो हमें भी तलाक लेने के लिए मजबूर ना कर दें। रौनक ने दुखी लहजे में सारी बातें बताईं जैसे कोई बच्चा शिकायत कर रहा हूं। रौनक की बातें सुनकर अगले ही पल आस्था की आंखों में थोड़ा दर्द झलका। घर वालों की सिचुएशन के जानते उसका दिल दर्द से तड़प उठा और अब जाकर उसे टाइगर और मारिया की आंखों का खालीपन अच्छी तरह से समझ आया और साथ ही साथ उसे ये भी समझ में आ चुका था कि केवल वही अपने पति से जुदा नहीं हो रही है बल्कि इस वक्त जितनी भी घर की लेडीज हैं उनके दिलों में भी वही दर्द पनप रहा है, वही दर्द जो आस्था झेल रही है। भले ही वो लोग चोरी चोरी चुपके अपने पति से मिल रहे हों लेकिन कहीं ना कहीं सभी लोग पूरी तरह से परेशान हैं। अब ये सुनते आस्था का दिल बैठ गया और अचानक आस्था को अंश के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अंश, जो कि इस वक्त झूले में ही मौजूद था, आस्था जल्दी से उसके पास गई। उसने उसे उठाकर अपनी सीने से लगा लिया था। उसकी नम आंखें और भी उदास हो गईं। वो दबी हुई आवाज़ में सबसे बोली, आप लोग हमें माफ़ कर दीजिएगा। हम आप लोगों को कह रहे थे कि कोई हमारा दर्द नहीं समझ सकता लेकिन हम ये बात भूल गए कि आप लोग भी इस तरह के दर्द से जूझ रहे हैं। और मारिया दीदी, टाइगर भैया, उन पर क्या बीत रही होगी? कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आस्था की आंखें एक बार फिर भर आईं। तभी नानी माँ आस्था के पास आईं और उसके कंधे पर थपकी देकर बोली, बेटा, तुम पहले अंश का ध्यान रखो। नानी माँ की बात सुनते ही आस्था ने सहमति में सिर हिलाया और अपने आंसुओं को पोंछा। फिर वो अंश को अभिमान जी की गोद में देने के बाद मायूस होकर सबको देखने लगी। तभी नानी माँ आस्था के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाती हैं, हम जानते हैं बिटिया कि इस वक्त न केवल आस्था के लिए बल्कि सभी के लिए एक मुश्किल घड़ी है लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि एक परिवार की तरह हम इन मुसीबतों से जरूर लड़ेंगे और एक बार फिर अपने परिवार को हंसता खेलता और खुशहाल परिवार बनाएंगे। ये बोलते नानी माँ की आवाज़ में मोटिवेशन साफ छलक रहा था। तभी रश्मि, राधिका, वंशिका और रौनक ने आकर दोनों हाथों से आस्था को साइड हक कर लिया था और आस्था ने भी उन चारों को बाहों में भर लिया था। उन्हें साथ देखकर दादाजी और अभिमान जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं दादाजी कुछ उदास से थे, उनकी आंखों में एक झिझक थी और वो ज्यादा देर उन लोगों को देख नहीं पाए और सीधा अपने कमरे में चले गए। आस्था उनका जाना नोटिस कर चुकी थी लेकिन फिलहाल के लिए उसने कुछ नहीं कहा। वहीं अभिमान जी अब अंश को गोद में लेकर सीधा हॉल में बने बड़े से सोफे पर जा पहुंचते हैं और उसके साथ ढेर सारी बातें करने लगे थे। वहीं दूसरी ओर वसुंधरा भी अब जल्दी ही जाग गई थी क्योंकि आज का खाना आस्था ने बना लिया था तो वसुंधरा सीधा जाकर किचन वगैरह साफ करने लगती हैं और सफाई करते वक्त खुश होकर मन ही मन सोच रही थी कि अच्छा हुआ आज का सारा नाश्ता आस्था ने बना लिया वरना पता नहीं आज वो रौनक क्या क्या फरमाइश कर बैठती। साथ ही साथ वसुंधरा ये भी सोच रही थी कि अगर उसका और आस्था का नॉर्मल सास बहू वाला रिश्ता होता तो किस तरह से वो यहाँ बैठकर सब लोगों पर हुक्म चलाती और आस्था से नई नई डिश बनवाकर हर रोज मजे से खाती। फिलहाल तो ये सारी चीजें वो सपने में ही सोच सकती थी क्योंकि अब तो उसका बेटा भी अपना नहीं था। उसने गहरी सांस ली और सीधा बाहर आ गई क्योंकि अभिमान जी को नाश्ते के ठीक आधे घंटे के बाद चाय पीने की आदत थी। वसुंधरा बिना कुछ कहे उनके लिए चाय बनाकर वहां खड़ी हो गई थी। अभिमान जी वसुंधरा को चाय के लिए कहने ही वाले थे लेकिन जैसे ही उन्होंने वसुंधरा के हाथों में चाय देखी वो थोड़ा सा चौंक गए। फिर एकदम से चिड़के बोले, इसको टेबल पर रख दो, तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरी गोद में छोटा बच्चा है। ये सुनकर वसुंधरा ने वो कप टेबल पर रख दिया था लेकिन अंश को देखने के बाद वसुंधरा का दिल एक बार फिर अंश को लेने के लिए मचलने लगता है। भले ही वसुंधरा पैसों के पीछे भागने वाली औरत थी लेकिन जब अरमान का जन्म हुआ था तब उसने उसे ढेर सारा प्यार जताया था और अंश बिल्कुल अरमान के जैसा ही था।
गोल चेहरा, सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी आंखें, अंश बहुत ही क्यूट और मासूम सा बच्चा था। फिलहाल अब अभिमान जी और अरमान के दिल में वसुंधरा के लिए सिर्फ नफरत ही नफरत थी। अरमान को कुछ महीनों तक ही केवल अपनी माँ का प्यार मिला था। उसके बाद जैसे जैसे अरमान बड़ा होता गया, उसने अपनी माँ का केवल खतरनाक रूप ही देखा था। फिलहाल जैसे ही अभिमान जी ने ये देखा कि वसुंधरा वहीं खड़ी होकर अंश को टकटकी लगाकर देख रही है, तब वसुंधरा को घूरते हुए वो नाराजगी से बोले, ऐसे क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। अभिमान जी की तीखी आवाज सुनकर वसुंधरा एक पल में ही अपने ख्वाब से लौटी और अभिमान को घूरते हुए बेपरवाह अंदाज में बोली, अभिमान, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। हाँ, मैं हूँ धोखेबाज, लेकिन ये बताओ मैं क्या करती। तुम मुझे कॉलेज के टाइम से अच्छी तरह से जानते हो। मैं कभी पैसों के पीछे भागने वाली औरत नहीं थी, लेकिन जब तुम दिन रात सिर्फ दारू पी कर आने लगे, उल्टी सीधी बातें करने लगे, तो मैं क्या करती। मेरी भी अपनी जिंदगी थी, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ घुट घुट कर नहीं गुजार सकती थी। तुम दारू पीकर आते थे, घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन तुम्हारे पास दारू पीने के लिए पैसे हुआ करते थे। हाँ, उस वक्त अगर मैंने अपना पेट पालने के लिए किसी और के साथ संबंध बना लिया तो मैं गलत हो गई। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये गलत है और मैं हूँ गलत, और मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम तो कम से कम मुझे इस तरह से मत बोलो। हमारी गृहस्थी बर्बाद करने की जिम्मेदार जितनी मैं हूँ, उससे कहीं ज्यादा तुम भी हो, समझे तुम। अब जैसे ही वसुंधरा ने बेबाकी से जवाब दिया, तो वसुंधरा की बात सुनकर अभिमान गुस्से से तिलमिला उठे। वो अभी वसुंधरा को अच्छा खासा सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन तभी उन्हें सीढ़ियों पर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। फिलहाल उन्होंने अपने दिल की कड़वाहट और दुख को दबाते हुए कहा, मैं तुम्हारी एक भी बकवास नहीं सुनूंगा, समझी, और ज्यादा बोलोगी तो जिंदा काट दूंगा तुम्हें। ये सुनकर वसुंधरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो अपनी बेचैनी छुपाते हुए अभिमान जी को देखकर बोली, सीधे तरीके से ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हें मेरी आज भी परवाह है।
अब जैसे ही ये शब्द वसुंधरा के मुंह से निकले, वैसे ही अभिमान अंदर ही अंदर किलस उठे। इससे पहले कि वो वसुंधरा को कुछ सुना पाते, उससे पहले उन्हें अंश की किलकारी सुनाई दी और वसुंधरा तब तक वहां से बाहर निकल चुकी थी, क्योंकि वसुंधरा ने अरमान को सीढ़ियों से आते हुए देख लिया था। अभी वो फिलहाल अरमान का सामना नहीं करना चाहती थी, जब तक कि अरमान नॉर्मल नहीं हो जाता। वसुंधरा समझ गई थी कि अब किसी भी तरह से अरमान के सामने आना पूरी तरह से बेकार था, क्योंकि अरमान अभी पूरे फटे हुए बम की तरह था। जो भी उसके संपर्क में आता, वो पूरी तरह से फट जाता, मिट जाता या नष्ट हो जाता। फिलहाल अब अभिमान जी को काफी गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वसुंधरा की बातों में कुछ ऐसा था जो उनके दिल में चुभ गया था। कुछ पल के लिए वो अपनी शादीशुदा जिंदगी के कुछ पुराने दिनों में भी खो गए थे। फिलहाल उन्होंने अपना सर झटका और एक बार फिर से सारी चीजें भूलकर अंश को प्यार करने लगे। वहीं अरमान जैसे ही नीचे आया और उसने अपने पिता को अंश के साथ खेलते हुए देखा, तो उसके माथे पर बल पड़ गए और उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। फिर वो झल्लाकर सोचने लगा, ये मिस्टर सिंघानिया एक मामूली से केयरटेकर के बच्चे को इस तरह से यहाँ क्यों खिला रहे हैं। इतना सोचकर वो सीधा अभिमान जी के सामने जाकर खड़ा हो गया था। वहीं आस्था भी तब तक अंश को देखने के लिए उनके पास आ गई थी। फिलहाल सभी लड़कियां और बाकी लड़के भी वहीं मौजूद थे। अरमान जैसे ही वहां रुका, तो वो अभिमान जी को एक टक घूरकर देखने लगा। अब अरमान को इस तरह से खुद को घूरते हुए देखकर अभिमान जी एक पल के लिए ठिठक गए। फिर वो चिड़के बोले, क्या हुआ, इस तरह से क्यों देख रहा है मुझे। हाँ, अभिमान जी ने एकदम कड़क अंदाज में अरमान से बात की थी। कहीं ना कहीं अभिमान जी अरमान से काफी हद तक गुस्सा थे। जिस तरह से अरमान ने उनकी बात नहीं मानी और राखी पर उसने अच्छा खासा ड्रामा किया, ये बात अभिमान जी को अंदर तक दुख दे गई थी। इसलिए वो अरमान से नाराज थे और उससे बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन अरमान के अचानक अपने सामने आ जाने पर उन्होंने उसे देखकर बोल ही दिया, मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहा है। अभिमान जी की आवाज़ में गुस्से को भांपते हुए अरमान को झुंझलाहट हुई। अरमान एक पल के लिए चौंक गया कि ये उनसे किस तरह से बातें कर रहे हैं। उसके पिता इतने तो बेपरवाह कभी थे ही नहीं। इतने दिनों से वो कितनी नॉर्मल तरीके से उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पिता उसे डांट रहे हों। अचानक अरमान की आँखें एकदम से सख्त हो गईं। फिर वो जल्दी से बोला, ये आप क्या कर रहे हैं, इस घर में आप एक मामूली से केयरटेकर के बच्चे को लेकर क्यों बैठे हुए हैं। अब जैसे ही ये शब्द अरमान के मुंह से निकले, आस्था के साथ ही साथ नानी माँ, दादी जी, अभिमान जी, आकाश, रश्मि, जितने भी घर के सदस्य थे, सभी मुंह खोले अरमान की ओर आश्चर्य से देखने लगते हैं। सभी के चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे मानो जैसे वो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ को देख रहे हों, क्योंकि अरमान अभिमान जी की गोद में खेलते हुए अंश को किसी और का बच्चा कह रहा था। कहीं ना कहीं ये जोक ऑफ द डे लग रहा था। वहीं अभिमान जी भी अरमान की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, लेकिन खुद के इमोशंस को छुपाते हुए वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोले, देखो मुझे बच्चे बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे खिला रहा हूँ, तुम्हें इससे कोई एतराज है क्या। हाँ, अब घर में छोटा बच्चा है तो मैं उसे खिलाऊंगा ही ना, और वैसे भी अगर तू चाहता है कि तेरा बाप इस उम्र में कोई काम करे तो बता दे, मैं वो काम भी कर लूंगा।
जैसे ही इस बात पर अभिमानची ने आईब्रो चढ़ाई और चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान लाते हुए सार्कास्टिक जवाब दिया, तो ये सुनते ही अरमान का चेहरा बदल गया और उसके माथे पर सिलवटें आ गईं। तभी आस्था आगे आई, फिर अभिमान जी की तरफ देखकर शांत आवाज में बोली, सर आप एक काम कीजिए, मुझे मेरे बेटे को दे दीजिए। अभी वो अभिमान जी को पापा बोलने ही वाली थी, लेकिन उसने वक्त रहते खुद को रोक लिया। इतना बोलकर जैसे ही आस्था अंश को लेने के लिए बढ़ी, तभी दादाजी तुरंत आगे आ गए और एकदम से बोले, रुक जाओ बिटिया, इस बच्चे को हमें दो, हम थोड़ी देर इससे कुछ बातें करना चाहते हैं। अब ये सुनकर अगले ही पल अरमान और ज्यादा चौंक गया और कन्फ्यूजन से दादाजी को देखने लगा। इससे पहले वो दादाजी को रोकता, तभी ध्रुव और आहान दोनों ही आ गए और बिना किसी बात की परवाह किए आहान तुरंत अंश को गोद में लेकर जल्दी से बोला, चैम के साथ तो मैं ही खेलूंगा और वैसे भी कितने दिन हो गए हमने इसके साथ में मस्ती भी नहीं की है, और दादाजी वैसे भी आप मेरे चैम को बोर कर दोगे, तो इससे अच्छा है ना कि ये अपने चाचू के साथ ढेर सारी मस्ती करे, ढेर सारी बातें करे। इतना बोलकर आहान ने जल्दी ही अंश को अपनी गोद में थाम लिया और उसके साथ मस्ती करने लगा था। अब ये देखकर तो अरमान के चेहरे पर इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन साफ झलक रही थी।